만탄.
ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा और सुशासन के 24 वर्षों के नेतृत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा।
2014 का ये ऐतिहासिक क्षण जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, और अब ऐसा तीसरा अवसर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के तौर पर देश की बागडोर संभाल रहे हैं और देश को हर स्तर पर नए आयाम तक पहुंचाया है। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर 2001 से शुरू हुआ ये जनसेवा का सफर प्रधानमंत्री का आज 24 वर्षों तक पहुंच चुका है और अपने सफर के 25वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। आज अपने एक्स पोस्ट्स की एक श्रृंखला में भी प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की प्रगति और विकास में एक जनसेवा के तौर पर जो उनका सफर रहा है उसके लिए उन्होंने देशवासियों का आभार भी व्यक्त किया। तो आज हम प्रधानमंत्री के इसी सफल नेतृत्व पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। अशोक टंडन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
नमस्कार।
तो सबसे पहले हम चर्चा को इसी से शुरू करते हैं कि 2001 से लेकर आज जो 24 वर्षों तक प्रधानमंत्री का जनसेवा या जन नेतृत्व का एक जो सफर रहा है उसको आप एक प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व के तौर पर कैसे देखते हैं। साथ ही जैसा कि आज अपने एक्स पोस्ट्स की एक श्रृंखला में प्रधानमंत्री ने कहा भी कि उनका ये सफर देश को समर्पित है और देश के विकास और देश की प्रगति में योगदान को लेकर ये उनका महत्वपूर्ण सफर रहा है, कैसे आप इसे देखते हैं?
इससे पहले कि मैं उनके ये जो राजनीतिक सफर की हम बात कर रहे हैं, उससे पहले मैं नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने से पहले भी नरेंद्र मोदी समाज सेवा में लगे हुए थे और वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री के तौर पर उन्होंने एक अपनी छाप छोड़ी थी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जब 26 जनवरी 2001 में मैं उस समय अटल जी के प्रधानमंत्री कार्यालय में था और हम लोग 26 जनवरी की परेड देख रहे थे और उसी समय ये समाचार मिला था कि गुजरात में एक बहुत ही तीव्र गति का भूकंप आया है। तो प्रधानमंत्री अटल जी जब वापस घर पहुंचे तो सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि नरेंद्र भाई को फोन किया और कहा कि आप तुरंत जहां भी हैं यहां चले आइए। और नरेंद्र भाई के प्रधानमंत्री निवास पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि जो ये त्रासदी गुजरात में आई है, ये गुजरात का जो प्रशासन है वो अकेले इसको नहीं संभाल पाएगा, आप तुरंत निकलिए और गुजरात जाकर जो कुछ भी भूकंप में राहत सामग्री है, जितनी भी चुनौतियां हैं, उनको आप संभालिए और गुजरात के प्रशासन में अपना योगदान दीजिए। नरेंद्र भाई मोदी ने लगातार गुजरात में जो भी विभीषिका आई थी उसके लिए अपना दिन रात एक कर दिया और जो भी उसमें चुनौतियां थी उनके पुनर्निर्माण में, गुजरात में फिर से खड़ा करने में ये योगदान दिया और जिसके चलते नरेंद्र भाई मोदी को गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर गांधीनगर भेजा था। तो ये महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाह रहा था। अब आपने जैसे बात कही कि ये चुनौतियां जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद स्वीकार किया था तो केवल भूकंप की ही एक चुनौती नहीं थी, क्योंकि उसमें एक महाचक्रवात आया, लगातार सूखे, और इन चुनौतियों का सामना करते हुए और अपने जोश और आशा के साथ उन्होंने गुजरात के पुनर्निर्माण के अपने संकल्प को और मजबूत किया और लगातार 2014 में प्रधानमंत्री बनने से पहले तक उन्होंने जो गुजरात में एक महत्वपूर्ण काम किए उसको अगर मैं गिनाने लगूं तो साबरमती का जो फ्रंट बनाया गया, जो है औद्योगिक विकास ठप पड़ा था उसको किया, कृषि में शीत प्रदर्शन करने वाला राज्य बनाया, व्यापार का विस्तार हुआ, इन्वेस्टमेंट्स आई और जितनी भी औद्योगिक क्षमता गुजरात की थी उनको और बढ़ाया और सामाजिक और भौतिक बुनियादी ढांचे को भी और मजबूत किया। तो ये उनका जो योगदान था मैं समझता हूँ वो भी हमारे श्रोताओं को इसकी जानकारी रहनी चाहिए।
जी, आपने विस्तार से बताया कि किस तरह से एक चुनौतीपूर्ण दौर में जब उन्होंने गुजरात का नेतृत्व संभाला और बाद में कृषि हो, व्यापार हो, उद्योग हो या ढांचागत विकास हो, उसमें गुजरात को उन्होंने अग्रणी बनाया। और इसी राजनीतिक कुशलता या नेतृत्व की कुशलता को हम देश भर में भी देखते हैं। जब देश के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने बागडोर संभाली तो उस वक्त भी हम देख सकते हैं कि देश में प्रशासन और सरकार के प्रति एक अविश्वास की भावना लोगों में रहती थी, जनता में रहती थी, तो उस अविश्वास की भावना को भी उन्होंने दूर किया और उन्होंने मूल मंत्र भी दिया शासन का, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और इस मूल मंत्र के आधार पर उन्होंने नीतियों को तैयार किया। और जहां एक तरफ हम देख रहे हैं कि देश के ढांचागत विकास को बहुत तेज गति मिली, तो वहीं देश के आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक भी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचा। तो जो गुजरात में उनकी राजनीतिक या नेतृत्व की कुशलता थी वो कैसे अब भारत में लागू हो रही है और किस तरह से उनके नेतृत्व में हम बहुत से नए परिवर्तन देख रहे हैं?
देखिए, जब 2013 में नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया गया तो देश में एक नई आशा की किरण जागती है, जिसके चलते हमने देखा कि कैसे उनको 2014 में प्रचंड बहुमत मिलता है और देश की बागडोर एक कुशल नेतृत्व के हाथ में दी जाती है और लोगों को अब ये लगने लगा उस समय के बाद से कि अब हम रात को चैन की सींद सो सकते हैं क्योंकि हमारी जो सीमाएं हैं वो सुरक्षित है, हमारे देश के अंदर कानून व्यवस्था जो है वो सुरक्षित है, देश में भ्रष्टाचार की समाप्ति हो जाएगी और ये सब को उन्होंने करके दिखाया। यही जनता की ताकत है जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है देश को एक कुशल शासन दे पाए हैं, सुशासन व्यवस्था हुई है
जी।
और जितने भी अभूतपूर्व प्रयास, उनकी योजनाएं, उनके कार्यक्रम, चाहे वो नारी शक्ति हो, युवा शक्ति हो, मेहनती मजदूर हो, अन्नदाता किसान हो, 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी से निकालना हो, ये सब जो कार्यक्रम हुए सफल, उनका एक एक कार्यक्रम, चाहे जैसे शुरू में उन्होंने स्वच्छता अभियान को लिया गांधी जी के आदर्श पर, तो उसको एक जन आंदोलन बना था।
बिल्कुल,
कोविड के समय में उन्होंने जो काल दी वो जन आंदोलन बना
जी।
इसमें एक बात बहुत आवश्यक है जाननी हमारे श्रोताओं को कि प्रधानमंत्री ने खुद भी ये बात कई बार कही है कि जब वो शपथ ले रहे थे तो उनको अपनी माँ की दो बातें जो थी वो याद रखने को कहा गया था। माँ ने कहा था कि दो काम अवश्य कर, एक तो हमेशा गरीबों के लिए काम करना और कभी रिश्वत मत लेना।
बिल्कुल, हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस ऐतिहासिक क्षण को तो सुना जब उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली, लेकिन हमारे पास एक और वो आवाज है जब प्रधानमंत्री ने 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तो हम अपने श्रोताओं को वो क्षण भी हम सुनवाना चाहेंगे।
हूँ नरेंद्र दामोदर दास मोदी,
ईश्वर नामे सौगंध लू छू,
ईश्वर नामे सौगंध लू छू
के कायदा थी स्थापित भारत ना,
के कायदा थी स्थापित भारत ना,
संविधान प्रत्ये,
संविधान प्रत्ये
हूँ साची श्रद्धा ने निष्ठा धरावीश,
हूँ साची श्रद्धा ने निष्ठा धरावीश,
हूँ भारत ना सार्वभौमत्व नु अने अखंडता नु,
हूँ भारत ना सार्वभौमत्व नु अने अखंडता नु
समर्थन करीश,
समर्थन करीश,
अने हूँ गुजरात राज्य ना मुख्यमंत्री तरीके ना,
અને હું ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકેના મારા
કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક,
મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક
અને અંતકરણપૂર્વક બજાવીશ,
અને અંતકરણપૂર્વક બજાવીશ।
અશોક ટંડન જી, હમ આપસે યે ભી સમજના ચાહેંગે કે जो नेतृत्व की एक क्वालिटी कहें या जिसके बारे में अभी आपने चर्चा भी की कि गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर जब उन्हें चुना गया था तो इसी चीज को उनके व्यक्तित्व में देखा गया था, किस तरह से जो ठोस निर्णय लेने की क्षमता उन्होंने अपने पूरे नेतृत्व में दिखाई है, चाहे वो गुजरात का उनका मुख्यमंत्री का समय रहा हो या प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने देश की सेवा की हो, उसमें उन्होंने परिस्थितियों के अनुकूल ठोस निर्णय लिए। हमारे श्रोता जानते ही होंगे कि जो देश की विदेश नीति है, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा है, उसके लिए बिना समझौता किए उन्होंने कई ठोस निर्णय लिए अपने नेतृत्व में, तो कैसे उनका ये व्यक्तित्व शुरू से ही रहा, क्योंकि आप तो नजदीकी से इस पूरे उनके व्यक्तित्व को जानते हैं, आप कैसे देखते हैं जो तुरंत और ठोस और प्रभावी निर्णय लेने की उनकी नेतृत्व की क्षमता है उस पर?
केंद्र में प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी सबसे महत्वपूर्ण जो एक जिम्मेवारी थी वो थी देश की सीमाओं की सुरक्षा। तो जब जब देश की सीमाओं पर संकट आया, जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया, तो जनता जिस प्रकार का जवाब चाहती थी कि एक सुदृढ़ और सक्षम नेतृत्व दे, वो उन्होंने करके दिखाया। वो बालाकोट का सर्जिकल स्ट्राइक था या ऑपरेशन सिंदूर था, और सबसे बड़ी बात, देश की जितनी भी सुरक्षा बल हैं, सुरक्षा सेनाएं हैं, उनको पूरा फ्री हैंड दिया, उनके नेतृत्व पर विश्वास रखा, और उन्होंने वो विश्वास पर खरे उतरे, और जिसके चलते आज देश की जनता रात को चैन से सोती है। उनको मालूम है कि देश की हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, देश में एक सक्षम नेतृत्व है, कुशल नेतृत्व है, और सबसे बड़ी बात, राजनीतिक स्तर पर जो एक स्थिरता उन्होंने पिछले 11 साल में कायम की है, एक ही दल के द्वारा एक ही प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार जनता का विश्वास हासिल करे, ये अपने आप में, मैं समझता हूँ, संसदीय लोकतंत्र में अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है जो भारत ने प्रस्तुत किया है। तो ये कोई एक ओवरनाइट नहीं हो सकता, उसके लिए वो उस नेतृत्व की जो जड़े हैं, जो उसका अनुभव है, जो उसकी ट्रेनिंग है। तो नरेंद्र भाई की जो ट्रेनिंग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में हुई, जिसके वो प्रचारक रहे, फिर वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री रहे, उन्होंने उत्तर भारत में पार्टी को खड़ा किया, उसके बाद गुजरात को संभाला, फिर अब देश को संभाल रहे।
और यही कुशल नेतृत्व की झलक और इस बारे में जो विजन है, हमें 2014 में जब लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री ने देशवासियों को संबोधित किया था तो उसमें मिल गई थी। और आज हम आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत के संकल्प और जो विकास के नए आयामों को भारत ने छुआ है, उसकी अगर नींव देखें तो हम उस भाषण में देख सकते हैं, उसका एक अंश छोटा सा हम अपने श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे।
मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार में बैठे हुए लोगों का सामर्थ्य बहुत है, चपरासी से लेकर कैबिनेट सेक्रेटरी तक हर कोई सामर्थ्यवान है, हर एक की एक शक्ति है, उसका अनुभव है। मैं उन शक्ति को जगाना चाहता हूं, मैं उस शक्ति को जोड़ना चाहता हूं, और उस शक्ति के माध्यम से राष्ट्र कल्याण की गति को तेज करना चाहता हूं, और मैं करके रहूंगा। ये हम पाके रहेंगे, हम करके रहेंगे, ये मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं। और ये मैं 16 मई को नहीं कह सकता था, लेकिन आज 2.5 महीने के अनुभव के बाद 15 अगस्त को तिरंगे झंडे की साक्ष्य कह रहा हूं कि संभव है, ये होके रहेगा।
तो जो शासन का नया दृष्टिकोण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था, आज उसके परिणाम हम देख रहे हैं। संक्षेप में आपकी टिप्पणी हम चाहेंगे कि कैसे उन्होंने देश के प्रशासन और शासन को एक नया नजरिया दिया और उसमें बदलाव लाया, और उसके किस तरह से हम लोग आज सकारात्मक नतीजे देख रहे हैं, छोटी सी टिप्पणी।
देखिए, ये सब जो संभव हो पाया कुशल नेतृत्व के साथ साथ, जो लोगों का विश्वास नेतृत्व के प्रति है, क्योंकि सब लोगों ने ये काम मिलकर किए हैं, जितनी भी योजनाएं, जितनी भी चीजें प्रधानमंत्री ने की, जो भी अभियान चलाए, उसको उन्होंने जन अभियान के तौर पर लोगों के समर्थन से किया, और इसीलिए वो गांधी जी से प्रेरणा लेकर उन्होंने स्वच्छता से लेकर और आज जितने भी कार्यक्रम हैं सरकार के, वो लोगों के सहयोग से जनता के जन आंदोलन के रूप में होने के कारण ही सफल हो रहे हैं। क्योंकि सरकार केवल योजनाएं बना सकती है, प्रधानमंत्री केवल अभियान चला, लेकिन जब तक जनता का समर्थन नहीं होगा, जनता का सहयोग नहीं होता, तो ये शायद इतना संभव नहीं था। तो उसके लिए वो स्वयं भी इसके लिए जो पूरा का पूरा श्रेय है वो देश की जनता को देते हैं।
तो लोगों के जीवन में सुधार लाना और देश की प्रगति में योगदान देने का और विकसित भारत का जो उनका संकल्प है, इस मामले में आगे आने वाले समय में इसके और बहुत महत्वपूर्ण परिणाम देखेंगे कि किस तरह से जो 24 वर्षों में देश को एक फायदा मिला है और देश विश्व पटल पर आज जिस मुकाम पर पहुंचा है, उससे भी आगे देश को हम ऊंचाइयों पर बढ़ता हुआ देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक टंडन जी, आप कार्यक्रम में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा और सुशासन के 24 वर्षों के नेतृत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। मंथन।